ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, हरेक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है, हिसाब किताब की भोगना है, जिसे योग बल से ही चुकतू करना है। मीठे बच्चे, हरेक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है। बच्चे, इस ड्रामा में पार्ट बजाते बजाते, मीठे बच्चे, तुमने बहुत विकर्म किए हैं, उनका बोझ है। बच्चे, कुछ ऐसे विकर्म हैं जो तुमने सजग अवस्था में किए, जागृति में किए हैं, तुम्हें पता भी है कि ये विकर्म है, फिर भी तुमने किए हैं, शायद संस्कारों के परवश होंगे, जैसे भी हो, पर एक जागृति में किए, दूसरे जागृत नहीं थे, और तुम्हें पता है और पता नहीं भी है, ऐसी अवस्था है, ऐसे विकर्म किए बिना जागृति के, अनकॉन्शियसली, पहले कॉन्शियसली किए हैं, दूसरे अनकॉन्शियसली किए हैं विकर्म। ये भी अनगिनत विकर्म है तुम्हारे। बच्चे, रास्ते से तुम ऐसे ही चल के जाते हो, बागान में या कहीं पर, और तुम्हारे पैरों तले चींटियां मर जाती है, विकर्म हुए हैं। तुम ये नहीं कह सकते कि चींटियां मेरे रास्ते में आए, नहीं बच्चे। हाँ, कोई भी किसी के रास्ते में आ जाए, किसी को भी दुख दिया, मना विकर्म हुआ, किसी को तुमने कॉन्शियसली दुख दिया है, बल्कि पता भी है कि ये दुख है, किसी को अनकॉन्शियसली दुख दिया है, समझ है बच्चे, अनकॉन्शियसली बहुत हुआ है तुमसे। बच्चे, कभी केला खा लेते हो, छिलका ऐसे फेंक देते हो, और कोई आता है और छिलके के ऊपर पैर रखकर गिर जाता है, तुम कहोगे मेरा कोई कसूर नहीं है, उन्हें रास्ता देखना नहीं होता, तुम्हें छिलका सही जगह फेंकना नहीं होता, तुम्हारा ही पूरा पूरा दोष है। शुरुआत तुमने की है, केला खाकर छिलका तुमने फेंका है, वो व्यक्ति वहां से रोज गुजरता था, आता जाता था, तुमने गिराया उसे। इसलिए बच्चे, इस धरा पर चलते समय कर्मों को संभालो, अनकॉन्शियसली बहुत होते हैं विकर्म, अनकॉन्शियसली, बड़ी सूक्ष्म बातें है बच्चे। कभी रास्ते चलते, तुम रास्ते के बीच से चल रहे हो, कोई गाड़ी वाला तुम्हारे पीछे से आ रहा है और उसे हॉर्न बजाना पड़ रहा है, वो परेशान हो रहा है, फिर तुम बाजू हो रहे हो, उसने हॉर्न बजाया, अपना पाठ समाप्त किया हॉर्न बजाने का, आगे बढ़ा, गाड़ी चला रहा है, बरोबर वहां भी हॉर्न बजाना था, क्योंकि वहां कोई और रास्ते में आया, पर उसने हॉर्न बजाने का पार्ट तुम्हारे साथ पूरा किया, उसे ठोक दिया, एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हुई, बोझा तुम पर, क्योंकि जो हॉर्न उसे किसी और के लिए बजाना था, वो उसने तुम्हारे लिए बजाया। बच्चे, गहरी बातें हैं, तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसे कर्म हैं सारे, कर्मों के व्यवहार को, कर्मों की गति को समझो, तो दिमाग चकरा जाएगा। समझ की बात है बच्चे? इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर अटेंशन दो। अनकॉन्शियसली बहुत विकर्म होते हैं तुमसे, बहुत ही ज्यादा, जिसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं। और कुछ है जो सबकॉन्शियसली होते हैं। समझ है? रात को सोते हो ना, सोने के बाद सपने आते हैं ना, फिर सपनों में इससे झगड़ा किया, उसे गाली दी, इसे मारा, उसे पीटा, इसका नुकसान किया, ये भी विकर्म है, जमा हो रहा है, हर चीज जमा हो रही है। जमा पक्का है, जमा कहीं नहीं जाएगा, ध्यान में रखना बच्चे। जितना जमा किया है चुप तो करना ही पड़ेगा। तुम तुम्हारे नशे में मत चलो, जब रिटर्न आएगा नशा उतर जाएगा। और बच्चे कर्मों की गति ऐसी होती है, जब शरीर स्वस्थ होता है, जवानी में होता है, तो माया विकर्म कराती है, और शरीर बुढ़ापे में चला जाता है तो उनका रिटर्न आता है, फिर कुछ नहीं कर सकते सहन करने के अलावा। इसलिए तभी लगता है यही विकर्म अगर पहले आते, यही बीमारी जब हम जवान थे तब आती तो हम सहन कर सकते थे, पर नहीं, कर्म भी न्यारे हैं, निराले हैं, उसकी गति तो बहुत निराली है, ऐसे समय पर आती है, बात मत पूछो। हर कर्म के लिए बच्चे ध्यान में रखना, हर कर्म के लिए। समझ है बच्चे? इसलिए कर्मों पर ध्यान देना, हरेक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है, बहुत बोझ है बच्चे, बहुत ज्यादा। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांच तत्वों का बोझ है। तो बच्चे पांच तत्वों का भी बोझ है, प्रकृति का भी बोझ है, यहाँ के जीव जंतुओं का भी बोझ है, मनुष्यों का बोझ है, आत्माओं का बोझ है, सूक्ष्म शक्तियों का बोझ है, भूत प्रेत पिशाच वेताल, इन सब का बोझ है। कितने बोझ है पता है तुम्हें? हरेक के सिर पर अनेक विकर्मों के बोझ है, अनेक जन्मों के अनेकों के बोझ है। समझ है बच्चे? विस्तार कितना करें? तुमने अपना घर बनाया है, जमीन तो खरीदी, पर वो जमीन किस सूक्ष्म शक्ति की थी तुम्हें पता है? वहां कौन निवास करता था, कौन से देवता थे, कौन से असुर थे, कौन से भूत प्रेत पिशाच थे, कौन सी भटकने वाली आत्माएं थी, ज्ञात है तुम्हें? समझ है बच्चे? इसलिए संभल कर चलो, समझ कर चलो। तुम किसी दुकान में जाके माल तो खरीदते हो, पर तुम जानते हो दुकान वाले ने माल कहाँ से लाया है? चुरा के लाया है या खरीद के लाया है? व्हाइट से खरीदा है या ब्लैक से खरीदा है? कुछ कल्पना है तुम्हें? तुम भी शामिल हो गए उसके विकर्म में। बच्चे अनगिनत बोझ है, विस्तार करे तो समय नहीं मिलेगा, समय में नहीं हो पाएगा, इतने बोझ हैं। इसलिए बच्चे योग करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो एक एक विकर्म चुकतु होता जाएगा, एक एक जन्म से तुम मुक्त होते जाओगे। बहुत है बच्चे, बहुत ज्यादा है। तुमने भोजन करते एक दाना भी छोड़ा, गिरा दिया, अन्न का बोझ चढ़ा। पानी पीते पानी को वेस्ट किया दो बूंद, थोड़ा सा पानी पाव ग्लास वेस्ट किया पानी का बोझ चढ़ा। इस प्रकार हर चीज का बोझ चढ़ता है बच्चे। तुमने निगेटिव सोच 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 कर इस सारे विश्व में कितने निगेटिव वाइब्रेशन स्प्रेड किए हैं, कल्पना है तुम्हें? वो सारा बोझ तुम पर है बच्चे। तुम्हारी जीवन तुम्हारे वाइब्रेशन से चलती है, तुमने जो भेजा है वही तुम्हें रिटर्न आता है, ध्यान में रखना बच्चे। कुछ और नहीं आता, इसी को तुम्हारी इस दुनिया के भाषा में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। जो तुमने किया है वही तुम्हें वापस मिलेगा, फिकर नहीं करना। तुमसे जो वाइब्रेशंस निकलते आज नहीं तो कल तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारे वाइब्रेशंस तुम्हारे पास ही आने हैं, ध्यान में रखना। तुम चाहो या ना चाहो, जियो या मरो, वाइब्रेशंस को कोई परवाह नहीं है। वही पर रिटर्न आते हैं जहाँ से जन्मे हैं, जहाँ से निकले हैं। इसलिए अपनी वृत्ति अच्छी रखना बच्चे। वृत्ति से वाइब्रेशंस निकलते हैं। तुम्हें लगता होगा अभी तुम ठीक हो, तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, कर्म बोल अच्छे हैं, दृष्टि विचार वृत्ति अच्छे है, पर इससे पहले क्या था पता है? इसलिए बच्चे रोना नहीं। तुम्हारी जीवन अगर दुख में है, परेशानी में है, तो रोना नहीं। तुमने परेशानी क्रिएट की थी, वही आज वापस आ रही। और बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, पाप कर्म अच्छे टाइम में आते हैं, बुरे टाइम में नहीं आते। जब सुख भोगना होता है ना, तब पाप कर्म आते हैं। अच्छा अन्न बनता है तब पेट दर्द होता है। पाप आया, खेल कूद की मौज की आनंद की बात होती है तब शरीर बीमार होता है। पाप आया, अच्छे प्रोग्राम को सुनना है देखना है तभी आंखें जलेंगी, कान में दर्द होगा। पाप आया, पाप उसी समय आता है जब तुम स्वस्थ होते हो। जब तुम बीमार हो पाप नहीं आएगा, विकर्म नहीं आएंगे। जब स्वस्थ हो तभी आएंगे। घर में धन अच्छे से आया ना, फिर बीमारी आती है साथ, फिर झगड़े आते, दंगे फसाद आते घर के आपस के। जब सब ठीक ठाक होता है घर में तभी नई परेशानियां आती है जो कभी सोची भी नहीं थी, विकर्म आए। ऐसे ही चलती है जीवन। इंसान जब अति बीमार होता है शरीर नहीं छोड़ता, स्वस्थ होता है अचानक शरीर छोड़ता है, यही कायदा है। इसी कायदे से सृष्टि चलती है। ऐसे ही पाप आते हैं, विकर्म आते हैं, रिटर्न। इसलिए बच्चे योग में रहो, जितना योग में रहेंगे आने वाले चुक्तु होते जाएंगे। आ रहे हैं कंटिन्यूअस, अखंड आ रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय है, आ ही रहे हैं, तुम उसे रोक नहीं सकते। तुम भले इस जन्म में अति सज्जन अति सद्गृहस्थ हो, पर पिछला जन्म, उसके पिछले का पिछला जन्म, उसका क्या पता है क्या तुम्हें? समझ है बच्चे, अपने इस जन्म की नियत पर मत जाओ। वहां कैसे थे तुम्हें पता है? इसलिए चुपचाप जैसी जीवन है उसे स्वीकार करो, अंगीकार करो, एक्सेप्ट करो। तुम्हें ही तुम्हारा मिल रहा है। तुमने अगर कंप्लेन की तो 100 गुना होगा। एक तो चुक्त हुआ, 99 वापस नए बने। कंप्लेन की तो वचन ध्यान में रखना, कंप्लेन करने के बाद एक का रिटर्न 100 गुना होता है। धर्मराज का कायदा अलग है, यहां पर तुम्हें जो सजा सुनाई गई है उसे स्वीकार करो, वरना तुमने जो विकर्म किए हैं उसके पाप जो तुम्हारे पास आ रहे हैं भुगतने के लिए, उसको भोगो चुपचाप ईश्वर की याद में, शांत रहकर बिना कंप्लेन किए। अगर कंप्लेन की, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, 100 गुना। अभी और 99 भोगो, तैयार रहना। किया तुमने, पता नहीं इसका मतलब तुम कंप्लेन करो, समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। किसी और का, किसी और को कभी नहीं मिलता यहां पर, तुमने जो किया है वही तुम्हें मिलेगा। सद किया है तो सद मिलेगा, उससे विपरीत किया है तो विपरीत मिलेगा। इसलिए कर्मों पर अटेंशन दो, ये कर्म भूमि है यह सृष्टि, अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है बच्चे। चुपचाप चलो, बाप को याद करते चलो, कुछ भी हो जाए, तन बीमार हो, मन बुद्धि संस्कार अस्वस्थ हो, कुछ भी हो, गुण शक्तियां समाप्त हो गई, संकल्प नहीं कट कर रहे सभी बातों में, शांत होकर चलो। और बच्चे, एक है बाहरी रूप से विकर्म करते हो, दूसरा अंदरूनी रूप से, मन में किसी के प्रति अशुभ भावना सोचोगे, विकर्म किया, बुद्धि में किसी के प्रति अशुद्ध विजन देखोगे, विकर्म किया, संस्कार से किसी के अशुद्ध संस्कार देखोगे, ये तो ऐसे ही है, इनको कितना भी सिखाओ समझ में नहीं आता, विकर्म किया तुमने, इसका भी तो रिटर्न है, हर विकर्म का रिटर्न है बच्चे, जिससे किया है उससे रिटर्न है, हाथ से पाप किए तो हाथ को रिटर्न, पैर से पाप किए तो पैर को रिटर्न, आंखों से किया तो आंखों को, कान से किया तो कान को। बच्चे, शारीरिक रूप से तुम्हारा शरीर जिन अंगों में बीमार है वहां से तुमने विकर्म किए, समझ जाओ, इसलिए उन अंगों में बीमारी है। हाथ से विकर्म किए तो पैर बीमार नहीं होंगे, ये कायदा नहीं है, हाथ ही बीमार होंगे, पैर से किया है तो पैर ही होंगे। जिसने विकर्म किए उसे सजा भुगतनी है, इसलिए बच्चे समझ कर चलो, संभल कर चलो, जब स्वस्थ हो सत्कर्म करो, बाबा की याद में बैठो। समझ है, इंसान क्या करता है, दुख में सिमरण और सुख में ना करे। अभी ऑलरेडी विकर्म आ चुके, रिटर्न आ चुका है, उसमें क्या सिमरण करोगे, इससे अच्छा सुख में करो। जब तुम स्वस्थ हो तो दुख आएगा ही नहीं, मना आने वाले विकर्मों के वाइब्रेशंस नष्ट हो जाएंगे, वाइब्रेशंस के रूप में विकर्म रिटर्न आते हैं, हमेशा ऐसे होता है। इसलिए बच्चे, कर्मों पर अटेंशन दो, कर्म बड़े हैं, कर्मों पर अटेंशन, कर्म जिसने सीखे उसे ज्ञान समझा। ज्ञानी बहुत हैं पर कर्म करना नहीं आता किसी को, हिसाब किताब की भोगना है, जिसे योग बल से ही चुकतू करना है, और कोई उपाय नहीं है। बच्चे, तुम्हारी किताब तुम्हारे पास ही है और तुम्हारा हिसाब भी तुम्हारे पास है, सब तुम्हारे पास है, ध्यान रखना, बस तुम जानते नहीं हो। ना जानने कारण इस घड़ी तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं, बच्चे ऐसे हो ही नहीं सकता। जिसके हिसाब किताब समाप्त तो हो जाते हैं, या तो वो वतन में चले जाते हैं या विश्व कल्याणकारी बनकर विश्व सेवा करते हैं, दो ही बातें हिसाब चुकतू होने के प्रमाण, दो ही है। तुम चेक करो अपने आप को। तुम अगर किसी बात से परेशान हो रहे हो, वरना हिसाब किताब बाकी है। फिर शारीरिक रूप से परेशान हो जाओ, या फिर मानसिक रूप से परेशान हो जाओ, या धन के रूप से, परिवार के रूप से, किसी भी रूप से अगर तुम परेशान होते हो, माना हिसाब किताब बाकी है। बच्चे भोजन करते संकल्प निकट कर रहे, भोजन करते तुम्हारे निवाले में कंकड़ भी आया छोटा सा, हिसाब किताब बाकी है। इसलिए इतना सा कंकड़ आया और तुम्हें एक निवाला खाते हुए दुख हुआ, हिसाब किताब है, सारा हिसाब किताब का खेल है, समझ कर चलना, बाबा की याद बढ़ाना, आत्मा समझ कर, तो ही चुकतू होंगे। प्रश्न है, बाप समान किस बात में साक्षी बनना है? उत्तर है, जैसे बाप को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता, भल कोई बच्चा बीमार भी पड़ता, कुछ भी होता, बाप साक्षी होकर देखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। हरेक का कर्म भोग अपना अपना है। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं उसकी भोगना उसे भोगनी ही है, इसलिए साक्षी होकर देखते रहो। बच्चे, कर्मों पर अटेंशन देना, कर्मों पर, और हो सके ना तो अपने कर्मों का चार्ट जरूर रखना। आज तुमने क्या सत्कर्म किए, आज तुमसे क्या विकर्म हुए, चार्ट होना चाहिए अपने कर्मों का। हमने फलाने को दुख दिया, बुरा बोला, हाथ पैर से दुख दिया, दृष्टि से दुख दिया, या फलाने को सुख दिया, अच्छा बोला, हाथ पैर से उनकी सेवा की, दृष्टि से सुख दिया, आत्मिक दृष्टि दी। कर्मों का हिसाब किताब होना चाहिए बच्चे, अच्छा लगेगा, तुम्हें पता तो चलेगा। देखो, कोई बच्चे दुख तो नहीं देते पर सुख भी तो नहीं दे रहे, कमाया और खाया, बचाया कुछ भी नहीं, सुख कितना देते हो। तुमने अपने लिए चाय बनाई कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुमने किसी और के लिए बनाई है क्या? आज के दिन ये सेवा है। तुमने अपनी व्यवस्था की कोई बड़ी बात नहीं, तुमने किसी और की, समझ है बच्चे। तुमने अपने आप को ज्ञान सुनाया, अच्छी बात है, किसी और को सुनाया, उसका मन हुआ था तब। तुमने अपने आप से योग किया, किसी और को योग कराने में मदद की, तुमने अपने आप से धारणा की पर किसी को धारणा करने में मदद की, तुमने अपने आप से सेवा की पर किसी और को सेवा में मदद की, अपने आप से, बोलने के बाद नहीं। बच्चे, पोतामेल होना चाहिए, आज क्या सत्कर्म किए, आज हमसे क्या विकर्म हुए, पोतामेल होना चाहिए तुम्हारे पास। आवेश में आकर विकर्म नहीं करो बच्चे, ऑलरेडी बहुत है जो चुक तू कर रहे हो, नए क्यों कर रहे हो, शांत रहो। समझ की बातें, समझ सकते हो समझो। देखो, हर किसी को अपनी भोगना भोगनी ही पड़ती है। डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा दवाई देगा, इंजेक्शन लगाएगा, ऑपरेशन करेगा, पर दर्द तो उसे ही सहना है। दर्द डॉक्टर नहीं सहता ना, डॉक्टर बस उपाय करता है। इसलिए बच्चे, उपाय करने वाले बहुत हैं तुम्हारे दुख के, पर दुख तो तुम्हें ही सहना पड़ेगा। इसलिए ऐसे कर्म कभी नहीं करो जिनसे दुख आएगा। ध्यान में रखना, सुख देने वाले कर्म करो, क्यों? तुम्हें ही वापस सुख मिलेगा। दुख देने वाले कर्म नहीं करना कभी, ध्यान देना बच्चे इस बात पर। गीत है, यह वक्त जा रहा है, ओम शांति। बेहद का बाप वर्षा लेने वाले बच्चों को समझा रहे हैं कि समय नज़दीक होता जाता है, यह कोई के लिए रुकता नहीं है, यह बुद्धि योग की मुसाफिरी है जो तुम्हें करनी ही है। यह शादी मुरादी तीर्थ आदि कुछ भी नहीं करने हैं। बाप का यह अंतिम डायरेक्शन है, मीठे मीठे बच्चे अब जाना है परम धाम। गीता भागवत रामायण महाभारत में जो लिखा हुआ है उसकी अब तुम पीठ कर सकते हो। जो बाबा ने पहले सहज राज योग सिखाया था वो अब सिखला रहे हैं भक्ति मार्ग के शास्त्रों में, और अब प्रैक्टिकल की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करते रहो। बच्चे अब प्रैक्टिकल में समझते हैं कि शास्त्र राइट है या इस समय जो बाप सम्मुख समझाते हैं वह राइट है। तुम बच्चे अब ड्रामा के राज को जानते हो। हरेक चीज सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजो तमो होती है। जैसे नया घर फिर पुराना हो जाता है, वैसे ही यह बेहद की दुनिया स्वर्ग थी, वहाँ कौन रहते थे। यह तुम्हारी बुद्धि में सब चमकता है, देवी देवताओं को कैसे राज्य भाग्य मिला था जो फिर अब मिल रहा है। बच्चे भी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, देही अभिमानी बनो, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। निरंतर उस बाप को और सुखधाम को याद करना है। बाप को कभी कोई बात में दुख नहीं होता, साक्षी हो देखते हैं। बच्चे कब बीमार रोगी बन पड़ते हैं तो क्या शिव बाबा को अफसोस होता होगा? कभी नहीं, कहेंगे ड्रामा अनुसार कर्म भोग तो हरेक को भोगना ही है। जैसे वह साक्षी हो देखते हैं, बच्चों को भी साक्षी हो देखना है। बेहद का बाप वह है परम पिता परमात्मा, उनका बच्चों में लव तो बहुत है ना। परमात्मा का आत्माओं में लव है। बाप कहते हैं, मैं जानता हूँ हरेक कर्म अनुसार दुख सुख पाते हैं, साक्षी हो देखते हैं। बच्चों को भी ऐसे साक्षी हो देखना है। हर एक जीव की आत्मा जो उल्टा कर्म करती है तो शरीर के साथ आत्मा को भोगना पड़ता है। दुख सुख आत्मा भोगती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर दुख से छुड़ाता हूँ, अब बच्चों को शिक्षा देता हूँ। मनुष्य गीता शास्त्र आदि से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं, तुम भक्ति मार्ग में मुझे कितना याद करते हो। भले कोई साइंस को नेचर को मानने वाला है, फिर भी किसी न किसी समय उनके मुख से हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर ज़रूर निकलता होगा। सब भक्त बाप को ज़रूर याद करते हैं। बाप सब कुछ करके बच्चों को सुखी बनाए खुद छिप जाते हैं। बाप आते ही हैं एक बार, कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे संकल्प उठता है, मैं अब जाऊँ। शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। जैसे आत्मा बिगर शरीर बोल नहीं सकती, गर्भ में बच्चा बनता है, फिर बड़ा होने से बोलना सीखता है। बाप तो आते ही बड़े शरीर में है, मेरा भी पार्ट है। मैं एक ही बार आकर सबको माया के दुखों से लिबरेट करता हूँ। अब तो सब तरफ मनुष्य दुखी है, त्राही त्राही करते रहते हैं, घर में रोना पीटना लड़ना झगड़ना लगा हुआ है। सतयुग में यह कोई बात होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है, बच्चे जानते हैं इस सृष्टि में कितना दुख है, कितने धर्म हैं। सतयुग में इतने धर्म थोड़े ही थे, 5000 वर्ष की बात है। लाखों वर्ष कह देने से मनुष्यों की बुद्धि से सतयुग का नाम गुम हो गया है। 5000 वर्ष पहले मैं आया था, आकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी। बाकी जो भी इतने मनुष्य हैं, सभी का विनाश होना है। इसके लिए ही यह महाभारी लड़ाई है, गाया हुआ है। महाभारी महाभारत लड़ाई में विनाश हुआ था। यह सब धर्म विनाश हो जाएंगे। जो देवी देवता धर्म के हैं, उनको आकर मैं पढ़ाता हूँ, मेरा पार्ट है। मनुष्य भी जानते हैं कि अभी बहुत दुख है, मैं भी जानता हूँ मनुष्यों को बहुत दुख है। घर में रोना पीटना लगा हुआ है, बच्चे धन के लिए बाप का खून करने में भी देरी नहीं करते हैं। इतनी गंदी दुनिया है, बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ बच्चों को स्वर्ग का विश्व का मालिक बनाने, कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। योग बल से विकर्मों को भस्म करना है, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, बीमारी खांसी आदि होती है। यह जन्म जन्म के हिसाब किताब की भोगना है। बच्चे ध्यान में रखना, छींक भी आई भोगना है, हल्की खराश भी हुई खराश भी आई भोगना है। समझ की बातें ध्यान में रखना बच्चे, समझदार बनो। हर बात में भोगना है बच्चे, हर बात में। तो बच्चे हर छोटी छोटी बात, छोटी से छोटी भी बीमारी है वो भोगना है बच्चे। हल्का सिर दर्द हुआ, आंखें जल रही है, सर्दी हुई, खांसी हुई, बदन दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, कुछ भी हो रहा है, बीमारी है, वो क्या है? भोगना है, विकर्म है। कुछ भी माना कुछ भी, विकर्म है। और कोई उपाय नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा टैबलेट लेकर तुम अभी के लिए उसे दबा सकते हो, ठीक कर सकते हो इंजेक्शन लेकर, कोई ट्रीटमेंट करके उसे तुम ओके कर सकते हो, पर विकर्म चुक तो नहीं हुए। उस घड़ी सिर दर्द शांत हुआ है टैबलेट लेकर। भोगना 1 घंटे की थी, तुमने टैबलेट ली और 1/2 घंटे में 15 मिनट में सिर दर्द समाप्त हुआ, 15 मिनट में, तो 1/2 घंटा भोगना बाकी है, सिर दर्द वापिस आएगा। योग करो, 1/2 घंटे में उपाय हुआ, 1/2 घंटे की भोगना बाकी है, 1/2 घंटे का सिर दर्द वापिस आएगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आना निश्चित है। विकर्म है, पेट दर्द है, तुमने उपाय करके ठीक किया, अच्छी बात है। भोगना जितनी थी उतने वाइब्रेशंस वापिस आएंगे। इसलिए बच्चे ये नहीं समझो कि तुमने उपाय किया और बीमारी ठीक हुई टेम्पररी, मना तुम्हारे विकर्म विनाश हो गए, गलत फहमी है। विकर्म बाकी है, योग करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, वो बस दबे हैं, रुके हैं। समझ है बच्चे, रुके हुए हैं। तुमने किसी से कर्जा लिया है, कर्जा मांगने को ही आया, संकल्प निकट कर रहे हैं। किसी और मित्र ने तुम्हारा कर्जा चुकतू किया, कर्जा चुकतू नहीं हुआ है, बस यहां से वहां ट्रांसफर हुआ है, दबा है। एक दिन उस मित्र को परेशानी आएगी, वो भी कर्जा मांगेगा कि मुझे पैसे वापस करो। इससे अच्छा कमाओ और चुकतू करो। कुछ भी बीमारी है बच्चे तुम्हें, कुछ भी मना कुछ भी, जीवन में जरा भी कोई भी बात है जिससे तुम्हें दुख होता है, विकर्म है, पाप कर्म है, विकर्मों का बोझा है। दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, किसी को भी लेकर तुम परेशान हो, विकर्म है। तुम अपने घर को लेकर परेशान हो, विकर्म है। गाड़ी बंगले को लेकर परेशान हो, विकर्म है। नौकरी धंधे को लेकर परेशान हो, विकर्म है। समझ है बच्चे, जब जब तुम परेशान होते हो, विकर्म आ रहे, तत्क्षण योग में बैठो। सिर दर्द स्टार्ट हुआ, दवाई नहीं लो, पहले योग करो, करके तो देखो। मैं ये नहीं कहता दवाई नहीं लो, पर एक मिनट, तीन मिनट रुक तो सकते हो दवाई के लिए, बाबा को याद करो। कुछ भी बीमारी हो, कुछ भी दुख दर्द आए, पहले बाबा को याद करो और फिर उपाय करो श्रीमत अनुसार, देखो क्या होता है। तुम क्या करते हो, पहले उपाय करते हो और उपाय से कुछ ना हो फिर बाप को याद करते हो, बाबा कुछ तो करो आप, इस दुख दर्द से निकालो। बाबा कहता है यही पहले याद किया होता तो ये हालत नहीं होती, पर पहले तूने तेरे मनमत से सब किया और किसी से उपाय नहीं हुआ तब मेरे पास आया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले आता तो मैं करता, अभी नहीं करूंगा मैं, अभी तुझे भुगतना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। समझ है बच्चे, समझदार बनो। इसलिए बहुत विकर्मों का बोझा है, बहुत है बच्चे, संभल कर चलो, याद को बढ़ाओ। जब भी फ्री टाइम मिले याद करो, एक सेकंड ही सही, एक सेकंड को थोड़ी देरी लगती है, एक सेकंड की याद तो कहाँ भी हो सकती है, चलते फिरते उठते बैठते एक सेकंड क्या बड़ी बात है, कहाँ भी याद कर सकते एक सेकंड, और एक सेकंड की देरी किसी को नहीं होती। कितना भी बड़ा कार्य हो, एक सेकंड के लिए कोई नहीं कहेगा कि एक सेकंड आपने लेट कर दिया। बच्चे याद बढ़ाओ, याद बढ़ाओ, ध्यान देना इस बात पर। बीमारी खांसी आदि होती है, यह जन्म जन्म के हिसाब किताब की भोगना है। अब जगदम्बा जगत पिता है, कितना उनका नाम बाला है, पूजा हो रही है, मनुष्य थोड़े ही जानते कि जगदम्बा अंतिम जन्म में कौन थी। अब जगदम्बा जगत पिता का प्रैक्टिकल में पार्ट चल रहा है, तो इनको भी देखो, सब जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। इतना योग लगाते हैं, सर्विस करते हैं, फिर भी कर्म भोग, ऑपरेशन आदि कराने पड़ते हैं। समझ गए बच्चे? कोई नहीं छूटता। इसलिए तुम कोई सत्कर्मों का फल लेके नहीं उतरे हो इस धरा पर, सत्कर्मों की ऊर्जा लेकर उतरे नहीं हो। इसलिए बाबा कहता है, जो जीवन में आ रहा है स्वीकार करो, किया तुमने, आ रहा है तुम्हारे पास और कंप्लेन तुम मुझसे कर रहे हो, बच्चे 100 गुना हो जाएगा, 100 गुना होगा। किसी ने विकर्म किया और वो सरकार की कंप्लेन कर रहा है, सरकार और ही ज्यादा सजा सुनाएगी। वो कहेगी किया तूने और कंप्लेन तू हमारी कर रहा है, उसे कभी रिहाई नहीं करेगी सरकार। इसलिए बच्चे कंप्लेन मत करो, तुम जो भुगत रहे हो वो तुम्हारे कर्म है, तुमने किया तुम भुगतो। जहर पीने के बाद इंसान मर ही जाता है, संकल्प निकट कर रहे हैं। अमृत पिएगा तो जीवित हो जाएगा। तुमने विकर्मों का जहर पिया है और बीमारियां तुम्हें हो रही है, दुख तुम्हें आ रहे हैं, ये तुम्हारे कर्म है बच्चे, हमारा कोई संबंध नहीं। न ड्रामा को दोष देना, न पार्ट को दोष देना, तुम्हारे विकर्म है। खाते वक्त याद नहीं आता जो ड्रामा खिलाएगा वो खाएंगे? नहीं, उस समय चाहिए हमें जो पसंद है वो खाएंगे, फिर उस पसंद से जो बीमारी होती है वो तुम मुझ पर धकेलते हो, ड्रामा पर धकेलते हो, पार्ट पर धकेलते हो, शोभा देता है? कर्म करते कुछ लगा नहीं, पर उसका रिटर्न आता है तो कहते ऐसा कैसा पार्ट, ऐसा कैसा ड्रामा, ऐसा कैसा रिटर्न। समझ है बच्चे? समझदार बनो। बाबा के हिसाब से, ड्रामा के हिसाब से समझदार वही है जो अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। उसी को बाप पसंद करता है। अपने कर्मों के लिए, अपने पार ड्रामा के लिए, अपने दुख दर्द के लिए जो किसी और को ब्लेम करता है, बाप उसे पसंद नहीं करता। मेरे वचन है सबको, अंत में मैं तुम्हारी सारी रील तुम्हें दिखाऊंगा, चिंता मत करना, वचन है मेरा, सबको दिखाऊंगा रील कि तुमने कहा क्या कर्म किया, फिर मुझे बताना ड्रामा था या तुम्हारे कर्म थे। मैं भी खड़ा रहूंगा तुम्हारे बाजू में। समझ है? और तुम ही न्याय करना, इन विकर्मों का क्या फल आना चाहिए, इन सत्कर्मों का क्या फल आना चाहिए, तुम ही न्याय करना, मैं बस चुप रहूंगा वहां पर। इसलिए बच्चे सबसे पहले जो है जैसा है स्वीकार करो। देखो बच्चे, ये गहरा राज तुम्हें बताता हूं, अंत में सबसे ज्यादा सजा वही खाता है जो अपने पार्ट ड्रामा उसको रिजेक्ट करता है, अपने आने वाले कर्मों के फल को जो रिजेक्ट करता है वही सबसे ज्यादा सजा खाता है। इसलिए ये कभी नहीं करना, ये महापाप कभी नहीं करना। तुम्हें जो भोगना मिली है दुख दर्द के रूप में, उसे रिजेक्ट नहीं करना, किसी और के माथे पर धकेल नहीं देना। ध्यान में रखना बच्चे, सबसे ज्यादा सजा मिलेगी। जो स्वीकार करता है ना वो कम सजा खाता है। इसलिए बच्चे तुम्हारे साथ वही हो रहा है जो तुमने किया है, ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना इस बात को। इस सृष्टि पर सुख सभी को चाहिए, सभी चाहते हैं हर सेकेंड हमें सुख मिले, दुख आए ही नहीं। ऐसे कर्म करो, सुख आएगा। तुम्हारे कर्म है क्या ऐसे जिससे तुम्हें सदा सुख मिले? कर्म का पता नहीं और सुख चाहिए सदा। अजीब बात है, बच्चे कर्म ऊंच करो, संगम पर कर्म श्रेष्ठ करते हैं जो बच्चे, उन्हें पूरे कल्प में सुख मिलता है। इसलिए कम से कम यहाँ श्रेष्ठ कर्म करो संगम पर, जब बाप मिला है। समझ गए बच्चे? अब ये कर्म भोग ऑपरेशन ये जगदम्बा जगत पिता को है, तो तुम्हारी क्या बात है? नंबर वन, आत्माओं को इससे गुजरना पड़ता है। इतना योग लगाकर भी, इतनी सेवा करके भी, इतनी हाजी करके भी, इतना श्रीमत पर चल के भी, तो तुम्हारी क्या बात है? समझ है बच्चे? इसलिए ब्लेम नहीं करो, ब्लेम गेम नहीं करो यहां पर। तुम्हारे साथ जो कुछ अच्छा बुरा हो रहा है उसके पूरे पूरे जवाबदार तुम ही हो, अच्छे के भी और बुरे के भी, दोनों के। मैं नहीं हूं, न मैं तुम्हें अच्छाई दे रहा हूं, न कोई और तुम्हें बुराई दे रहा है। मैं बस ज्ञान दे रहा हूं कर्मों का, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं बस कर्मों का ज्ञान देने आता हूं और ज्ञान से कर्म करना सिखाता हूं। और जो तुम कर्म करते हो ऊंच, उससे तुम्हें ऊंच सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। समझ है? मैं कुछ नहीं करता यहां पर, मैं कुछ भी इंटरफेयर नहीं करता, ध्यान देना इस बात पर। और बच्चे, यह कलयुग है, इस घोर कलयुग में सदा सुख की आशा करना पागलपन है। यही कह सकेंगे, ये मेंटली रिटायर्ड पर्सन है जो सदा सुख की आशा करता है। हाँ, आनंद में रह सकते हो यहां, आनंद के लिए कोई आधार नहीं लगता, सुख के लिए आधार लगते हैं। तुम्हें रहने के लिए घर ना हो दुख आएगा, आनंद कायम है। रास्ते पर रहो या घर में रहो, फकीर भी आनंद में है और अमीर भी आनंद में है, आनंद के लिए आधार नहीं लगता, सुख के लिए आधार लगता है। सुख के लिए शरीर स्वस्थ चाहिए। समझ है बच्चे? सुख के लिए सब स्वस्थ चाहिए, आनंद के लिए स्वस्थ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बच्चे देखो यार, सुख की अपेक्षा नहीं करो, आशा नहीं करो, घोर कलयुग है, यहाँ कदम कदम कांटे हैं सबके जीवन में, एक दूसरे को भी चुभो रहे हैं। समझ है? तो बच्चे, पहले तो अपने जीवन को स्वीकार करो, पूर्णता जो है जैसी है तुम्हारी करनी है, तुमने जो किया है वही तुम्हें मिल रहा है, अभी अच्छा करो ताकि भविष्य में अच्छा मिले। समझ है? और बच्चे, ज्यादातर पाप कर्म इंसान से आवेश में होते हैं, एक्साइटमेंट में, जब अति दुख होता है ना मिडल वाला, तब पाप कर्म होते हैं। इंसान ऐसे कुछ कर बैठता है जिससे वो अज्ञानी होता है, अज्ञात होता है, या जब अति सुख होता है मिडल वाला, तब ऐसे कुछ कर जाता है जिससे पाप बनता है। समझ है बच्चे? इसलिए समझदार बनो, अपने जीवन को स्वीकार करो, तुम्हारे जीवन में जो सुख या दुख की भोगना है उसके जिम्मेवार पूर्णता तुम हो। और बच्चे, तुम्हारे अपने कर्मों के लिए और उन कर्मों के रिटर्न के लिए ईश्वर को कभी जवाबदार नहीं ठहराना, ये महापाप कभी नहीं करना, यह सबसे बड़ा महापाप है कि अपने दुखों के लिए ईश्वर को जवाबदार ठहराना। सुख आए तो कहा ईश्वर ने दिए, नहीं, मैंने अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए सुख आया। बच्चे, मैं तुम्हारे सुख में भी नहीं हूं और दुख में भी नहीं हूं, ध्यान में रखना, तुम ही जिम्मेवार हो, पर ये महापाप नहीं करूं मुझे दोषी ठहराने का कि ईश्वर के कारण हमारी जीवन ऐसी है। बच्चे, महापाप नहीं करो, समझ है, ध्यान देना इस बात पर। इतना योग लगाते हैं, सर्विस करते हैं, फिर भी कर्म भोग, ऑपरेशन आदि कराने पड़ते हैं। उस सन्यास और इस सन्यास में बहुत फर्क है। वह तो घर बार छोड़ कफनी पहन सन्यासी बन जाते हैं, हम तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। जब अंत आएगा तब हमारा पूरा सन्यास होगा, अभी पुरुषार्थ ही है। उन सन्यासियों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थी सन्यासी है, उन्होंने तो घर बार छोड़ा और नाम पढ़ा सन्यासी। हम सन्यास के लिए बाबा द्वारा कितनी मेहनत करते हैं, तो यह अनेक जन्मों का बोझा सिर पर है। कितना योग में रहते हैं, औरों को सुख देते हैं। बच्चे, तुम जो योग में हो ना, उससे न सिर्फ तुम्हारे विकर्म विनाश हो रहे बल्कि दूसरों को भी सुख मिल रहा है। तुम्हारे मुझे याद करने से आत्मा समझकर दूसरों को भी सुख मिल रहा है, उनके दुख भी नष्ट हो रहे हैं, क्यों ना करें फिर। अगर आत्मा समझकर बाप को याद करने से सारी सृष्टि सुखी होती है तो क्यों ना याद करें। हम तो सुखी हो ही जाएंगे, मना याद करने वाले, पर जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं याद के, उससे सारी सृष्टि सुखी हो रही है। बच्चे, पता है तुम्हें, तुम्हारा मुझे याद करना मना तुम्हारा मुझे इस सृष्टि में लाना है। जब जब तुम मुझे याद करते हो, मुझे इस सृष्टि में आना पड़ता है सूक्ष्म रूप से, और मेरा आना मना इस सृष्टि से दुख का जाना है। इसलिए याद के बड़े गहरे रहस्य है, कभी किसी दिन सुनाएंगे, ड्रामा हुआ तो। समझ है बच्चे, जब तुम मुझे याद करते हो मैं तुम्हारे सम्मुख हाजिर होता हूं, ध्यान में रखना बच्चे। यहां की सूक्ष्म शक्तियां एक नाम लेने से हाजिर हो सकती है, मैं तो याद से ही हाजिर हो जाता हूं, नाम भी लेने की जरूरत नहीं बाबा करके, मैं हाजिर हो जाता हूं, और मेरा आना मना दुख समाप्त होना। इसलिए बच्चे, याद बढ़ाओ, याद से ही दुनिया सुखी हो जाएगी। समझ है, कितना योग में रहते हैं, औरों को सुख देते हैं, उनकी आशीर्वाद भी मिलती है, तो भी देखो कर्म भोग निकल पड़ता। कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, वह अंत में होनी है। यह जन्म जन्मांतर के कर्मों का हिसाब किताब है। अभी पूरे सन्यासी बने नहीं हैं, उनके सन्यास और हमारे सन्यास में रात दिन का फर्क है। वह घर बार छोड़ जंगल में जाकर बैठते हैं, विकारी मनुष्य उनकी सेवा करते हैं। ऐसे भी नहीं वह कोई सब पावन बने हुए हैं, वह भी साधना करते रहते हैं। कर्म भोग तो उनको भी होता है, अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा सिर पर है। विकर्मों का बोझा योग से ही भस्म होता है। जब तक बाप नहीं आवे तब तक कोई योग सिखला न सके। उनों का योग सर्वशक्तिमान बाप से नहीं है, तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। ब्रह्म व तत्व को सर्वशक्तिमान थोड़े ही कहेंगे। सर्वशक्तिमान तो एक परमपिता परमात्मा शिव है, वह परम आत्मा है जो आते हैं। ब्रह्म व तत्व तो नहीं आएगा तो बच्चों के सिर पर भी बहुत पापों का बोझ है, बहुत मेहनत करनी है विकर्म विनाश करने लिए। विश्व का मालिक बनना है, सिवाय बाप के कोई बना न सके। बाप बनाते हैं योग बल से, बल मिलता है सर्वशक्तिमान बाप से, वह वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। अब तुम बच्चे जानते हो, यह सारी दुनिया दुखी है। सुख जो भी है वह अल्पकाल काग विष्टा समान है। सच्चा सुख तो होता ही है स्वर्ग में, वह दुख देने वाली माया ही नहीं। कई इन बातों को मानते ही नहीं, कहते हैं ऐसे कैसे होगा। नहीं मानते हैं तो समझो हमारे दैवी कुल के नहीं है। दैवी कुल वाले जरूर मानेंगे, कल्प पहले भी माना था। अब बाप सुना रहे हैं तो बेहद के बाप को सब सेंटर्स के बच्चे याद पड़ते हैं। कोई सन्यासी ऐसे कह न सके कि हम सभी बच्चों को सुनाते हैं, वह सभी फॉलोअर्स बनेंगे। उनको ऐसे मुरली थोड़े ही भेजी जाती है जो सब सुने। यहाँ तो सबके पास मुरली भेजी जाती है जिससे श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बने। भगवान को कहा जाता है श्री श्री सबसे श्रेष्ठ। बाप कहते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तो मैं हूँ जो सभी को श्रेष्ठ बनाता हूँ। पतित दुनिया में श्रेष्ठ कहाँ से आए। श्री श्री 108 यह हूबहु शिव बाबा की रुद्रमाला है, उनको ही श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सतयुग की स्थापना कर मनुष्य सृष्टि में श्रेष्ठ बनाते हैं। जो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं तो समझते हैं श्री श्री 108 जिनकी माला बनती है। ऊपर में है निराकार शिव बाबा, वह हमको ऐसा श्रेष्ठ बना रहे हैं। यह है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय है परमपिता परमात्मा का। यह विश्व को नॉलेज देने लिए विश्वविद्यालय है। जो चाहे सो विश्व का मालिक बने, चाहे तो स्वीट होम में जाकर बैठे। बाप आए ही है सदा शांत सदा सुखी बनाने। मैं कल्प कल्प आकर के भारतवासी बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की आत्माएं होती हैं। तुम जानते हो बरोबर, बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यथा योग जितना जो पुरुषार्थ करते हैं, बाकी सब आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाएगी। शरीर सब खत्म हो जाएंगे। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होगी। तो तुम बच्चे जानते हो बाकी कितना समय होगा। अभी करोड़ों है, सतयुग में सिर्फ 9 लाख होंगे। शुरू में थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाएंगे तो इतने सब जीव जो हैं उन सब की आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाएंगी। सबकी कयामत का समय है। माया ने सबको कब्र दाखिल बना दिया है, कब्रिस्तानी बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं है। अब तुम समझते हो कि बेहद का बाप हम सब आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। विश्व का मालिक बनने का यही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। बाप की जायदाद है ही स्वर्ग। अगर यह निश्चय है तो क्यों न हम उनकी मत पर चल बाप से स्वर्ग का वर्षा ले। इसमें छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं, विकारों को छोड़ना है, सो तो अच्छा है ना। बाबा हम क्यों नहीं पवित्र रहेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे। 5 विकारों का संन्यास करने से ही हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप कहते हैं अब मरना है, जरूर निर्वाण धाम में जाना है, तो क्यों ना कमाई करनी चाहिए। और धर्म वाले भी आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, इब्राहिम क्राइस्ट आदि की आत्माएं आती है सलामी भरने, लक्ष्य लेने, बाकी नॉलेज नहीं लेंगे। हाँ, कोई ब्राह्मण कुलभूषण होगा तो उठ पड़ेगा। ब्राह्मण कुलभूषण बनने बिगर देवता कुलभूषण बन न सके। ब्राह्मण बने फिर देवता बने, देवता ही क्षत्रिय वैश्य फिर शूद्र बनते हैं। यह वर्ण चक्र लगाते रहते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जो वर्थ पाउंड थे उन्हों को भी 84 जन्म पूरे करने हैं। सो अगर निश्चय हो जाए कि बेहद के बाप से वर्षा जरूर लेना है, जिससे आधा कल्प सुख पाते रहते हैं, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करें। छोड़ने की तो बात ही नहीं है। वह सिंध का पार्ट था, लिखा हुआ है कृष्ण ने भगाया, गऊ चराते थे। भगाया तो क्या गाली खाने के लिए, भगाया पटरानी बनाने के लिए। यह तो भट्टी बननी थी, तपस्या कर सर्विस लायक बनना था। अब तो कोई मुश्किल सर्विस लायक बनते हैं। सो तुम प्रैक्टिकल अनुभवी हो, तुम समझते हो शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वह भी काम करते हैं। परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर यहाँ आया था। अभी भी कहते हैं मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, समझाते बच्चों को है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।
धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 सिर से अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ उतारने के लिए सर्वशक्तिमान बाप की याद में रह बल लेना है। 2 सर्व को सुख दे आशीर्वाद लेनी है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पूरा संन्यास करना है। इस कयामत के समय में सबसे बुद्धि योग तोड़ देना है। वरदान है मास्टर नॉलेजफुल बन 5000 वर्ष की जन्मपत्री को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले आप बच्चे विशेष इस समय 5000 वर्ष की जन्मपत्री को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए। सभी ने यह विशेष बात जान ली कि इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। स्लोगन है, अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा विश्व कल्याणकारी बनो। सदा विश्व कल्याणकारी रहो और सदा विश्व का कल्याण करते रहो हर पार्ट में। अच्छा, ओम शांति।
ईश्वरीय परिवार का वारे में स्वराज अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुणा परम गुणा परम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति।